ओम शांति। फाइनली मुझे भी आप सबका दर्शन करने का मौका मिला। यस, जरूर ताली बजनी चाहिए क्योंकि हम आपको पहले दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे अमृत वेले का मॉर्निंग मेडिटेशन हो या फिर कॉन्जिक्यूटिव सेशंस चले हैं। आप सबका जो अटेंडेंस है वो बहुत अच्छा है, पार्टिसिपेशन है वो बहुत अच्छा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है। तो ऐसी ऑडियंस से मिल करके हमको भी खुशी होती है। कविता बहन ने आपको बहुत अच्छी एक जर्नी कराई और लास्ट में आपको डिवाइन डेस्टिनेशन पर पहुंचाया। ये ज्ञान सरोवर भी एक बहुत अच्छा डिवाइन डेस्टिनेशन है और इस ज्ञान सरोवर में भी आप कहां बैठे हैं? हार्मनी हॉल में, है ना। यहां की एक एक चीज आपको कुछ न कुछ सिखाएगी। इस हार्मनी हॉल से आप जरूर एक चीज सीख के जाएंगे, दैट इज हार्मनी। यहां के जो कविता बहन ने भी एक मेंशन किया, दादी प्रकाशमणि जी जो इस संस्था के हेड थे, वो हमेशा कहते थे अगर हार्मनी स्थापन करनी है तो क्या करना पड़ेगा? हार मानना पड़ेगा। एक ने हार मान ली तो हार्मनी स्थापन हो गई। चलिए, आप सब भी यहां पर है कि नहीं मेरे साथ? आप सब में भी हार्मनी है कि नहीं? थोड़ा सा आप हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए, क्योंकि ये जो सेशन है इसमें हम ज्यादातर बातचीत करने वाले हैं। इट वोंट बी वन साइडेड। हम लोग डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे। और आप लोग दो दिन से बहुत कुछ सीख रहे हो तो चलो थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दो। एक्टिविटी बहुत सिंपल सी है। हारमोनी आपने कहां देखी है? ज्यादातर जो ऑर्केस्ट्रा होता है जहां बहुत अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जब वो एक हार्मोनाइज वे में प्ले होते हैं तब एक बहुत सुंदर म्यूजिक जनरेट होता है। लेकिन वहां पर सबका तालमेल बहुत जरूरी है। हम भी आपसे ये चाहते हैं कि आप सब एक हैं, यहां पर हार्मोनाइज हैं, वो आप हमें डेमोन्स्ट्रेट करें। और वो करने के लिए मैं आपसे एक एक्टिविटी कराना चाहता हूं। इट विल बी सिंपल क्लैपिंग एक्टिविटी। व्हेन आई से वन यू हैव टू क्लैप वंस, व्हेन आई से टू यू हैव टू क्लैप ट्वाइस। टाइम उतना ही होगा। चलिए एक बार डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। वन टू, ओके। जब टू बोलू तो फटाफट क्लैप करना। इट वोंट बी जैसे वन के लिए एक सेकंड लिया तो टू के लिए फटाफट, ठीक है। और एक बार ट्राई करते हैं। वन टू, गुड। जब सिचुएशन बहुत सिंपल होती है तो हम सब अच्छे से कर लेते हैं, है ना। लेकिन जब सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती है तो धीरे धीरे हमारी हार्मनी डिस्टर्ब होती है। ऐसा ही होता है ना। आप अभी यहां ज्ञान सरोवर में हैं, मेजोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहां फ्री हैं, बहनों को खाना नहीं बनाना है, भाइयों को ऑफिस नहीं जाना है, हम यहां से फ्री हैं। तो यहां ये मन बुद्धि का हार्मनी बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जब सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग होती है तो धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है और धीरे धीरे हार्मनी खत्म होती है। सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते और ही कुछ हैं, ठीक है। तो हम भी थोड़ा सा यहां पर आपको चैलेंज देते हैं, देखते हैं आपकी हार्मनी कहां तक बनी रहती है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। वन टू, वेरी गुड। अभी भी थोड़ा ना आगे पीछे हो रहा है। आई जस्ट वॉन्ट, भले यहां पर आई थिंक 200 लोग बैठे हैं, मुझे एक क्लैप सुनाई देना चाहिए। वन टू, वेरी नाइस। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको। इफ व्हेन आई स्पीक ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 यू हैव टू क्लैप वंस, व्हेन आई स्पीक 2, 4, 6, 8 यू हैव टू क्लैप ट्वाइस। तो अभी आपको अटेंशन देना है कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर मैं जीरो बोलू तो डोंट क्लैप। जीरो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? जीरो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? जीरो इज ऑड। जीरो को इन्वेंट किसने किया? भारत ने। जीरो को भारत ने इन्वेंट किया है। और जीरो को एक्चुअली इवन नंबर कहा जाता है बिकॉज इट्स अ पैरिटी। जब डिवाइड करते हैं फाइनली जो बचता है उससे डिसाइड होता है वेदर इट इज इवन और ऑड नंबर, ठीक है। आई वोंट स्पीक जीरो, आई विल स्पीक इधर ऑड और इवन माइनर वन से ऊपर ही बोलूंगा, ठीक है? एवरीवन रेडी? ध्यान से सुनना और मुझे एक ही ताली बजनी चाहिए, मुझे एक सुनाई देना चाहिए. चलिए थ्री. अरे थ्री कैसा है? ऑड नंबर है. अब देखो आपका हारमोनी डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. चलिए वगैन अगेन. वन फोर ग्रेट सेवन नाइन. व्हेन आई स्पीक वन थ्री फाइव सेवन यू हैव टू क्लैप वंस. व्हेन आई स्पीक टू फोर सिक्स एट यू हैव टू क्लैप ट्वाइस. और एक बार ट्राई करते हैं, हमारी हारमोनी होनी ही चाहिए. हम यहां कुछ ट्राई करके जाएंगे, है ना? ये आपको जरूर याद रहेगा. चलिए वन थ्री फोर ग्रेट. अभी हम एक थोड़ा सा म्यूजिक जनरेट करते हैं. म्यूजिक कैसा होगा? थक 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 थक, ठीक है? थक 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 थक. चलिए वन थ्री फोर फाइव. अभी नहीं जनरेट हुआ. हम सबको म्यूजिक जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान से सुनना और एक साथ बजाना. वन थ्री फोर सिक्स. हाँ ठीक है, वेरी नियर. एक लास्ट टाइम और. वन टू थ्री ग्रेट. क्लैप फॉर ओन सेल्फ. ये जो छोटा सा एक्टिविटी है, जब हम एक संकल्प के साथ एक ही विचार वाला जो कर्म करते हैं, हम सब हार्मोनाइज हो जाते हैं. एक संकल्प के साथ हम वाइब्रेट होते हैं. और इसके साथ जब हम कोई भी कर्म करेंगे तो कर्म बहुत इजी हो जाता है. द रीजन इज हम सब का दृष्टिकोण, हम सब का एनर्जी फ्लो किस तरफ हो रहा है? एक तरफ हो रहा है. मैंने ये एक्टिविटी क्यों कराई? क्योंकि हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सेवा का क्षेत्र, है ना? सेवा का क्षेत्र. आप सब यहां पर दो दिन से बहुत कुछ यहां पर ले, लगभग दो दिन हो गया, आज आपका तीसरा दिन है. बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हो, बहुत अच्छे अनुभव भी करेंगे. और जब कोई चीज हमें अच्छी मिलती है ना, तो ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है, अच्छी चीज मिलती है तो क्या करते हैं? दूसरों को आप भी बांटोगे कि नहीं बांटोगे या अपने तक रखोगे? मुझे यस सुनाई नहीं दिया. वेरी गुड. तो यहां से जब अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो जो कुछ आप यहां से अच्छा सीख कर जा रहे हो, जैसे आप कोई तीर्थ स्थान पे जाते हैं ना तो कहते प्रसाद लिया, और प्रसाद कितना होता है? थोड़ा सा होता है, लेकिन फिर भी घर तक कैरी करते हो, हर एक को बांटते हैं. ऑफकोर्स यहां वैसा वाला शायद प्रसाद न हो, लेकिन गुणों का प्रसाद आपको यहां बहुत अच्छे से मिल रहा है, भरपूर होकर के मिल रहा है. आपको स्थिति का प्रसाद बहुत अच्छे से मिल रहा है. तो यहां से जाकर के अपने अपने स्थान पर उसको बांटना जरूर, लेकिन उसके लिए चाहिए आप सब में हार्मनी. अंदर भी हार्मनी, बाहर भी हार्मनी. तो चलिए इस सेशन पर आते हैं कि ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की जो एक्टिविटीज हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं. ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवलिंग की जब बात करते हैं, सेक्टर की बात करते हैं, तो जैसे काफी सारे भाई हमने देखे थे रेलवे से बिलोंग करते हैं, तो उनको तो लगेगा यस वी बिलोंग टू दिस सेक्टर. लेकिन काफी सारी बहनें होंगी, जैसे मान लो भाई तो जॉब करते हैं रेलवेज में, लेकिन जो बहन है वो हाउसमेड है, सॉरी हाउसकीपर है, तो उनको लगेगा कि हम तो माना हम कैसे इस फील्ड से बिलोंग करते हैं. या फिर कोई यहां दूसरे फील्ड से भी होंगे तो उनको लगेगा कि हम कैसे इस फील्ड से जुड़े हुए हैं. लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों. ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की जो सेक्टर है, इसमें दो प्रकार के लोग हो सकते हैं. एक है सर्विस प्रोवाइडर और एक है सर्विस कंज्यूमर. हो सकता है हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर से डायरेक्ट ऐसे ना जुड़े हो, लेकिन हम सब ट्रैवल तो करते हैं ना. और ये चलो किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती होगी, लेकिन कुदरत ने एक गाड़ी जरूर दी है. वो गाड़ी कौन सी है? 11 नंबर की गाड़ी. यहां बहुत ऐसे ह्यूमरस वे में कहते हैं किसी को चल के जाना ना, कहते हमारे पास व्हीकल नहीं है लेकिन हमारे पास 11 नंबर की गाड़ी है, माना अपने पैर, तो उस पर तो चल के जाएंगे ना. तो कहीं ना कहीं हम सब इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं. और जहां कनेक्शन होता है, जहां संबंध होता है, वहां पर राइट्स के साथ आपकी ड्यूटीज भी आती है, जिम्मेवारी आती है. जैसे आप अपने परिवार की जिम्मेवारी लेते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो उसकी जिम्मेवारी लेते हो, जिस देश में रह रहे हो उसकी जिम्मेवारी लेते हो, वैसे अगर हम इस सेक्टर से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है और इसीलिए सेवा की बात आती है। तो हम सब इस सेक्टर से जुड़े, इसलिए यहां कोई ये नहीं कहना कि नहीं ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग से हमारा कहां कनेक्शन है, हम सब कनेक्टेड हैं। तो इस सेशन का पर्पज ही है सेवा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें एक सेवा की बात कही जाती है। सेवा माना क्या? जिसको जरूरत है उसको सहयोग देना, वो है सेवा। ठीक बात है ये? एवरीवन अग्रीज विद दिस? जिसको जरूरत है इसको आपने थोड़ा सा भी सहयोग दिया, दैट इज सेवा। अब ये सेक्टर बहुत बड़ा है और इस 45 मिनट्स में पूरे सेक्टर के जो इश्यूज है वो कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कुछ कुछ पहलू लेंगे। और उसमें भी ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवलिंग जो सेवा करता है वो है ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज और टूरिज्म। इन तीन सेक्टर्स पर ये विंग फोकस करता है और उसमें भी सबसे ज्यादा जो इश्यू है दैट इज मोर कनेक्टेड टू रोडवेज। रेलवेज में उतने इश्यूज नहीं है। ऑफकोर्स इनॉग्रल में डॉक्टर जो थे, डॉक्टर अर्चना आई थिंक, वो कह रहे थे कि उनके भी जो स्टाफ है उनको स्ट्रेस होता है ना, ये इश्यूज तो सारे फील्ड में है ही है। लेकिन रोडवेज का जो एक इतना भयंकर इश्यू है कि उसको डिस्कस करना यहां जरूरी है। तो चलिए कुछ स्लाइड्स में वो इश्यू क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट फिगर्स के रूप में आपको नहीं बताऊंगा, एक छोटा सा आपको एक सीन डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। आप सबने ये स्टेडियम देखा होगा या एटलीस्ट सुना होगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इस स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है? 1,32,000, लगभग 1.5 लाख, चलिए मान के पकड़ चलते लगभग 1.5 लाख। अब आप विजुलाइज करिए, इस स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, स्टेडियम बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है, आप भी वो मैच देखने जाने वाले हैं, लेकिन कोई कारण से आप मैच देखने नहीं गए, घर पे कोई अर्जेंट काम आ गया, मेहमान आ गए, आपने वो क्रिकेट मैच स्किप किया, लेकिन आपको पता था कि बहुत ऐसा अच्छा मैच चलने वाला जहां खचाखच वो स्टेडियम भरा हुआ है। नेक्स्ट डे आप उठते हैं, टीवी ऑन करते हैं और टीवी जब ऑन करते हैं आपको एक न्यूज सुनने को मिलती है कि उस स्टेडियम में कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, बॉम्ब फटे और वहां जितने भी लोग थे उसमें से कोई भी बचा नहीं। सीन क्या है? एक स्टेडियम जो खचाखच भरा था लाखों लोगों से, लगभग 1.5 लाख लोगों से, वहां एक बॉम्ब फटा और वहां कोई भी बचा नहीं और आपने ये न्यूज देखा। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? कोई एक जरा जोर से बोल सकते हैं? सॉरी, वो एक थॉट है कि भगवान का धन्यवाद मैं बच गया। अच्छा, लेकिन ये जो सीन हुआ वो कैसा लगेगा आपको? बहुत सीरियस लगेगा ना? ऐसा ही कुछ भारत देश में हर साल होता है ना? ऐसा ही कुछ भारत देश में हर साल होता है और वो जो लोगों की जो मरने की जो संख्या है वो कम नहीं हो रही है, वो बढ़ते ही जा रही है। इसकी इतनी एंट्री है। ये मैंने आपको क्यों ये एक सिमिलैरिटी वाला सीन दिया, ये गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, हर साल भारत में करीब करीब 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में जान गंवाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट डेथ, इंजरीज की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। कमिश्नर सर आए थे, उन्होंने कहा था 3.5 लाख इंजर्ड होते हैं, वो भी ऐसी इंजरी कि जो शायद आगे कुछ काम करने के लायक न रहे, इतना इसका इम्पैक्ट है। सोचिए, जब हमने वो सीन जो मैंने आपको दिखा तो तुरंत आपको एक सीरियसनेस वाली बात लगी, लेकिन ये जो एक भारत के लिए जो नुकसानकारक एक चीज हो रही है हर साल, उसके बारे में यहां कितने लोगों को पता है? जिसको पता वो हाथ उठाओ। 1, 2, 3, बहुत कम। मैं भी 5 साल के पहले जब तक ट्रांसपोर्ट विंग से नहीं जुड़ा था मुझे इसकी सीरियसनेस नहीं पता थी, आई एडमिट इट, मुझे पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ हो रहा है। द रीजन इज ये इतना साइलेंट किलर है क्योंकि हमारे साथ नहीं होता ना, देश के कोई कोई कोने में हो रहा है, कोई कोई कोने में हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री जब इसका एनुअल रिपोर्ट बनाते तब इसका रियलाइजेशन होता है। तो हर साल 1.5 लाख लोग जान गंवाते हैं। अभी हमारा सेशन पूरा होगा 45 मिनट्स में, उसमें भी लगभग 13 से 15 लोग अपनी जान गंवा चुके। रीजन क्या होगा? रोड एक्सीडेंट्स। चलिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। विषय थोड़ा गंभीर है, हम इसको बहुत सीरियस नहीं बनाएंगे, हम इसको थोड़ा सा ये भी करेंगे, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कितना बड़ा इश्यू है और हम सब कहीं ना कहीं इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो रीजन, अच्छा रीजन जानने से इसका ग्रेविटी ऑफ लॉस, हमको लगता है केवल 1.5 लाख लोग मरे हैं अगर फिगर्स की बात करें, लेकिन इसका और कहां कहां इश्यूज होते हैं, इसका इम्पैक्ट कहां पड़ता है, इसको समझने के लिए सबसे पहला क्यों इमोशनल ट्रॉमा, क्योंकि जो 1.5 लाख लोग उनकी एवरेज एज क्या है 25 to 45। घर में अगर कोई बहुत बुजुर्ग है जिसने 90 क्रॉस किया 100 क्रॉस किया है, उनका जब शरीर छूटता है तो फिर भी उतना फील नहीं होता, लगता है वो 3-4 पीढ़ी का सुख देख के गए हैं। लेकिन अगर कोई यंग है ना, वो अगर चला जाए तो कैसा फील होगा? वो जो इमोशनल ट्रॉमा होता है, हम में से कई लोग इससे गुजर चुके होंगे, मैं भी गुजरा हूं, वो जो इमोशनल ट्रॉमा होता है उससे बाहर आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और वो भी सोचिए अगर वो जवान जो लड़का या लड़की जो जिसका शरीर छूट गया है वो उस फैमिली का सोल ब्रेड ओनर अर्नर था, वो अकेला कमाने वाला व्यक्ति था, तो क्या होगा उस परिवार पर, कितना ज्यादा बोझ पड़ेगा, अब कौन कमाएगा, कितने संकल्प चलेंगे, सोचिए आप कितना जबरदस्त उन पर प्रेशर बनेगा। इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स, दुनिया का सबसे युवा देश कौन सा है? इंडिया, या सब जानते हैं दुनिया का सबसे युवा देश है भारत। और भारत के ये जो मैं जिस कंडीशन की हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जान भी किसकी जा रही है? युवाओं के। वी आर लूजिंग अवर HR रिसोर्स, हमारा यूथ इसमें जा रहा है, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा सीवियर है। और लास्ट फाइनेंशियल लॉस, एक एक्सीडेंट जब होता है तो वहां जो प्रॉपर्टी का नुकसान होता है उसके पीछे हॉस्पिटल एम्बुलेंस जो भी जिनके मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है, पुलिस को वहां काम पे लगना पड़ता है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है। गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स कहते हैं लगभग मोर देन 1% ऑफ GDP, 1% ऑफ GDP ऑफ इंडिया इज स्पेंड बिहाइंड सच एक्सीडेंट्स। सोचिए आप 1%, भारत का GDP है लगभग 3.5 लाख करोड़ USD, मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूं, 3.5 लाख करोड़ USD, उसका 1% कहां जाएगा? एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ US dollars में तो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस है ना। इसलिए ये टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है? गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स में, अगेन ये सब गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया गया है, इसका की रीजन कौन सा है सोचिए। ज्यादातर हमको लगता है कोई पी करके चला रहा है, या फिर वेदर कंडीशन है, या रोड्स ठीक नहीं है, या गाड़ी ठीक नहीं है, ब्रेक फेल हो गए, ये सब। लेकिन मेजर रीजन कौन सा है? ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग का मतलब क्या है? ओवर स्पीडिंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने 120 पे चलाया, 150 पे चलाया, दैट इज ओवर स्पीडिंग। अगर मैं रेसिडेंशियल एरिया में जा रहा हूं, वहां अगर मैं 40 की स्पीड पे भी चलाता हूं, दैट इज ओवर स्पीडिंग। माना जो स्पीड लिमिट बताई गई है उससे आप ज्यादा चला रहे हो, माना दैट इज ओवर स्पीडिंग। और स्पीड लिमिट भी कुछ भी सोच करके वहां रखी गई होगी, है ना, ऐसे तो नहीं किसी ने लिख दिया होगा, उसके पीछे कुछ रिसर्च हुआ होगा। भाई इस एरिया में आप जा रहे हो, मान लो वहां स्कूल है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को आइडिया नहीं होता, वो सडनली दौड़ के आ जाते हैं, इन दैट केस वो ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुरंत गाड़ी को रोकना है। लेकिन स्पीड ज्यादा आप रोक नहीं पाओगे, इसलिए ऐसी स्पीड लिमिट्स दिखाई जाती है। सो द मेजर रीजन इज ओवर स्पीडिंग। उसके अलावा और भी रीजन्स है, ड्रिंक एंड ड्राइव, या यूज ऑफ मोबाइल फोन, या फिर ड्राइविंग ऑन द अपोजिट लेन या रॉन्ग लेन कह सकते हैं, ये सब रीजन्स हैं। चलिए और थोड़ा इस कंडीशन को समझते हैं कि जहां पर ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अभी बहुत ही सचमुच स्ट्रेंज आप सबको लगेगा कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो कहां आ रहे हैं। मैं ये सब स्टोरी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग पूछते हैं ब्रह्मा कुमारी इसका ट्रांसपोर्ट के साथ क्या कनेक्शन है ना, लॉ एंड ऑर्डर वाले फॉलो करे या गाड़ी बनाने वाले उस चीज को अटेंड करे, ब्रह्मा कुमारी इसमें रोल है। उस रोल को स्पष्ट करने के लिए ये सब फिगर्स मैं आपको दिखा रहा हूं। तब पहले तो जो करने वाला एक्सीडेंट वाला है उसका एज कितना है? 25 to 45 माना हेल्दी व्यक्ति है, उसको कोई एज सच फिजिकल इश्यूज, उसके पास वैलिड लाइसेंस है, माना उसको गाड़ी चलाना अच्छे से आता है। अच्छा, वो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो कौन से रोड्स पे हो रहे हैं? नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पे नहीं हो रहे हैं, माना जहां बहुत अच्छी सड़कें बनी है वहां यह एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे। तो बचे कौन से रोड्स? सिटी रोड्स या रेसिडेंशियल रोड्स, वहां पर ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। फिर है रोड का टाइप कैसा है, वो कोई कर्व रोड्स नहीं है या ऊपर नीचे वाले रोड नहीं, वो स्ट्रेट रोड है। और फिर है वेदर कैसा है, तो खुद कोई गलती नहीं है, एकदम सनी और क्लियर वेदर है जहां विजिबिलिटी एकदम अच्छी है। और फाइनली ये तो मैंने कहा कि ओपन एरिया रेसिडेंशियल एरिया है, और एक्सीडेंट करने वाले लोग कौन है? वो व्हीकल, दैट इज टू व्हीलर। ये सब कुछ देखते हुए समझ में आ रहा है कहीं मन का इश्यू है भाई? सड़क रेसिडेंशियल एरिया है, आप जवान है, आपको गाड़ी चलाना आता है ना, आप हाईवे पे स्पीड से नहीं चला रहे हो, आप रेसिडेंशियल एरिया में चला रहे हो, कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कम है। और इसके पीछे क्या कारण है? रीजन बिहाइंड रीजन, रीजन बिहाइंड रीजन। यहां पर एक स्पिरिचुअल लॉ में मेंशन करना चाहता हूं, जो कुछ आप अपने आउटर वर्ल्ड में देख रहे हो, वॉट एवर यू सी इन योर आउटर वर्ल्ड, इट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। अगर आपके अंदर वाली जो दुनिया है वहां पर अगर शांति है, सुख है, चैन है, तो आपकी बाहर की दुनिया में भी सुख होगा, चैन होगा, अमन होगा। अगर अंदर हार्मनी नहीं है तो बाहर हार्मनी कैसे हो सकती है? इसलिए जो लोग ओवर स्पीड करते हैं उसका कहां कनेक्शन हो रहा है? ओवर थिंकिंग, मन बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा है। और जिनका मन बहुत सोच रहा है, जितने ज्यादा संकल्प उतनी ज्यादा नेगेटिविटी, ये भी स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, जितने कम संकल्प उतने हेल्दी संकल्प पॉजिटिविटी है, ये सोचते बहुत ज्यादा है। दूसरा रीजन क्या है? ड्राइव ऑन द अदर साइड। हम क्यों रॉन्ग साइड पे चलाते हैं? हमको थोड़ा सा ना जल्दी होती है, हमको लगता है उतना आगे जाकर के यू टर्न कौन लेके आएगा भाई, थोड़ा सा चलो ना शॉर्टकट लगा देते हैं, इम्पेशंस है ना, हमको लगता है थोड़ा टाइम बचाने के लिए। ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्राइव को ड्रिंक कौन करता है वो तो आगे हमने सुना ही, कहते थोड़ा सा पैक मार लो यहां साइलेंस हो जाएगा, लेकिन वो पी करके आप ड्राइव करते तो क्या होगा, है ना? लैक ऑफ वो स्ट्रेस का कारण, यूज ऑफ मोबाइल, लैक ऑफ सेंसिबिलिटी। यहां एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग गाड़ी चलाते या फिर खाना बनाते या और दूसरा काम करते करते मोबाइल यूज करते हैं, उनके मन में क्या होता है? उनको लगता है कि मैं एक साथ दो दो काम कर सकता हूं, ठीक है, मल्टीटास्किंग। आजकल लोग बहुत ये वर्ड यूज करते हैं, मल्टीटास्किंग, और अपने आप को बहुत प्राउडली बोलते भी, मैं ये भी करता हूं, ये भी करता हूं, ये भी करता हूं। लेकिन ये वर्ड कहां से आया? ये वर्ड है आईटी से, कंप्यूटर से आया, मल्टीटास्किंग। हम भी कंप्यूटर फील्ड को बिलोंग करते हैं, क्या सचमुच कंप्यूटर एक साथ दो काम करता है? हाँ? क्या सचमुच मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज है, या जस्ट एक वो फीलिंग है, वो एक विजुअल है? हाँ, कंप्यूटर भी कभी मल्टीटास्किंग नहीं करता है, वो आपको फील देता है कि मैं एक साथ दो काम करता हूं। कंप्यूटर को जिस तरह से डिजाइन किया है, मान लीजिए ये एक काम है, ये दूसरा काम है, तीसरा है, चौथा है, कंप्यूटर में कैपेबिलिटी है कि उसने इसको टाइम दिया, उसके स्टेट को रजिस्टर किया, फिर दूसरे पर गया, उसके स्टेट को रजिस्टर किया, फिर तीसरे पर गया, फिर चौथे पर गया, लेकिन एक टाइम पर वो एक ही काम करता है। और आखिर क्योंकि वो मशीन है, उसका स्विचिंग पॉसिबल है। हमारे लिए स्विचिंग पॉसिबल है इतना फास्ट? हाँ, वी आर लिविंग बींग्स, हम कंप्यूटर के साथ अपनी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो घर में कुछ इश्यू हो गया हस्बैंड वाइफ के बीच में, या बच्चे और माँ बाप के बीच में, वो जो स्टेट ऑफ माइंड होता है जब आप ऑफिस में जाते हो, वो स्टेट ऑफ माइंड वहां असर करता है। ऐसे ही ऑफिस में अगर कलीग्स के साथ हो गया, बॉस के साथ कुछ हो गया, वो घर पे आके असर करता है? करता है। हम उतना जल्दी स्विचिंग नहीं कर पाते हैं। ऑफकोर्स मेडिटेशन आपको इसमें मदद करेगा, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि, अचीवमेंट हो जाएगी, बहुत बड़ी कला है टू स्विच फ्रॉम वन रोल टू अनदर रोल, ये करेंगे, है ना। अब इसको और थोड़ा सा ग्रेविटी इसका बताता हूं और इसकी बड़ी प्रॉब्लम क्या है। एक फनी वीडियो है, देखिए आप एंजॉय करेंगे। इसको ध्यान से देखना हाँ, इसमें क्या दिखाया जा रहा है।
थोड़ा सा वॉल्यूम। हाँ जी मैडम, बाहर आइए
आप, अंदर आ जाते।
बाहर आइए,
अभी आना है,
जल्दी जल्दी
यहीं पे।
अरे बाहर आइए मैडम, यहीं पे। हाँ जी मैडम, क्या कर रही हो?
मैं बीए फर्स्ट ईयर अनुविला यूनिवर्सिटी।
अरे मतलब कैसे चला रही थी?
ऐसे।
मेरा मतलब है कि इतनी तेज की चला रही थी
सर, वो उसकी कोई वजह थी। मम्मा का फोन आया हुआ था, मम्मा से बात करी थी।
अच्छा, मतलब 40 की स्पीड पर फोन पर बात कर रही थी।
सर आप जैसे लोगों से तो शक ही करवा लो। आप ये तो पूछो मम्मा का फोन क्यों आया हुआ था।
क्यों आया था
सर? वो ना एक्चुअली मुझे ना गाड़ी ले जाते वक्त सीट बेल्ट पहनने की आदत नहीं है, मैं ऐसे ही लेके निकल जाती हूँ। तो मम्मा मुझे बोल रही थी कि आज तो सीट बेल्ट पहन के जाइयो।
मतलब 40 की स्पीड पर फोन पर बात करके और सीट बेल्ट भी नहीं लगाई हुई।
सर आप समझते क्यों नहीं हो, मैं ना सीट बेल्ट लगाने ही वाली थी और मैंने देखा ग्रीन से रेड हो गई लाइट, मैं उसको जंप कर गई।
अच्छा, फिर रेड लाइट जंप क्यों करी?
सर आपको ना मेरी मम्मी होना चाहिए था, आपने और उनमें कोई फर्क नहीं है पता है। एक तो पूछ तो लो, कोई बंदा रेड लाइट जंप करके भाग रहा है कोई तो रीजन होगा ना उसका। आम इंसान के पास तो कुछ है ही नहीं ना, बस आप लोग शक करते रहो, कभी घर पे शक करो कभी सड़क पे शक करो। वो एक्चुअली पीछे किसी को थोक दिया था तो उसके रिश्तेदार पीछे आ रहे थे पकड़ने के लिए मुझे।
तुम गाड़ी ठोक कर आ रही हो?
पता नहीं, गाड़ी के अंदर बैठे भी थे दो लोग।
तुम्हें कुछ होश है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं?
सर वो जिस दिन लाइसेंस बनेगा उस दिन समझ आ जाएगी।
लाइसेंस भी नहीं बना?
नहीं सर, लाइसेंस बना के करूंगी क्या? एक बात बताओ, मैं अपने घर वालों को बोल रही हूँ मुझे गाड़ी दिला दो गाड़ी दिला दो गाड़ी दिला दो, कब से बोल रही हूँ, 18 बर्थडे से बोल रही हूँ मैं कि गाड़ी दिला दो, कोई दिलाई नहीं रहा, मैं क्या करूँ?
ये किसकी गाड़ी है?
ये पता नहीं किसकी गाड़ी है, खोली थी तो मैं लेके आ गई, मैंने सोचा एक राउंड लगा के आती हूँ, तब तक आप मिल गए।
ये गाड़ी क्यों लूटी तुमने?
सर वो पापा के पास बैंक जाना था ना जल्दी जल्दी।
पापा बैंक में?
हाँ सर पापा बैंक में।
पापा को बुलाओ।
पापा आ नहीं पाएंगे सर।
क्यों?
पुलिस उनको आने नहीं देगी।
पुलिस क्यों नहीं आने की?
बैंक लूट रहे थे ना बिना मास्क के।
शॉर्ट वीडियो है जिसने ही बनाया, बहुत सुंदर बनाया है। क्या मैसेज था इसमें? बहुत सारी फॉल्ट किए, बहुत सारी गलतियां की है ना, लेकिन गलती का रियलाइजेशन नहीं था। इसी को कहा जाता है इमोशनल वीकनेस। या तो हम किसी के दर्द को बहुत ज्यादा फील कर लेते हैं, माना किसी और के साथ कुछ हुआ और हम डिस्टर्ब हो गए, या तो फिर हम किसी के दर्द को फील ही नहीं करते हैं, दोनों ही गलत हैं। यह है इमोशनल वीकनेस, है ना। हमें व्यक्ति के दर्द को समझना भी है, जैसे एक डॉक्टर करता है, बीमारी को समझता भी और उसका निदान भी देता है, लेकिन खुद डिस्टर्ब नहीं होता है। दैट इज इमोशनल स्ट्रेंथ, दैट इज इमोशनल सेफ्टी, वो हमें रखना है। ये इमोशनल वीकनेस है जो हर एक के अंदर है। हमें पता ही नहीं चलता किसी के साथ कुछ हो रहा है, क्या फर्क पड़ता, हमको लगता है हम उससे कनेक्टेड नहीं है। जब तक हमारा जान पहचान वाला व्यक्ति वहां इन्वॉल्व नहीं होता है, हम वहां कोऑपरेट करते ही नहीं है। दिस इज इमोशनल वीकनेस। और इसको ठीक करने के लिए अब इसका सोल्यूशन क्या है ना, और इसीलिए हम लोग जो सेवा करते हैं तो ये तीन चीजों पर हम फोकस करते हैं। वी ट्राई टू एजुकेट, जो इश्यू है उसको सेंसिटाइज करना। कई बार हमें पता होता है, जैसे हम सबको पता है गुस्सा नहीं करना है, ये हम सबको ज्ञान है, लेकिन क्यों नहीं करना, इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ऐसी हर चीज के लिए उसको सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। एंड द थर्ड थिंग इज यू एनेबल द पर्सन कि हाँ ये मैं कर सकता हूं। यहां आपको 2-3 दिन के लिए क्यों बुलाया गया स्पेसिफिकली, क्योंकि यहां जब आप एक लाइफ जिएंगे, आप कुछ अपने लिए करेंगे, तो आप एक अंदर मन में बिलीफ लेके जाएंगे कि आई कैन डू इट। कल आपने मोहित गुप्ता सर का क्लास सुना, उसमें बार बार उन्होंने क्या कहा, आई कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप जस्ट वो संकल्प करिए, स्ट्रांग संकल्प करिए, वो पॉसिबल है ना। तो दोस्तों आप भी जब यहां से जाओगे ना, तो कोई भी चीज जो भी आप यहां सीख रहे हो, किसी भी चीज के लिए ये नहीं कहना है पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल है, हमने एक बार यहां पर उसका टेस्ट करा है। और इसलिए यहां मदद आपको जो करेगा, इसका जो सोल्यूशन है दैट इज मेडिटेशन। यहां पर रोल आता है ब्रह्मा कुमारीज का कि ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग में जो इश्यूज हो रही है, जो फील्ड है इसमें जो इश्यूज हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, यहां पर मेडिटेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। लेकिन यहां एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, मेडिटेशन इज नॉट जस्ट सिटिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग, इट इज द वे ऑफ लिविंग, ये जीवन जीने की कला है। इट्स अ हेल्दी लिविंग, सिर्फ बैठने की बात नहीं है, यहां ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बैठना, वो मेडिटेशन करना वो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ आपको यहां के प्रिंसिपल्स चाहिए, वो फूड से रिलेटेड होंगे, स्लीप से रिलेटेड होंगे, लोगों से व्यवहार करने से रिलेटेड होंगे, वो सब बातें फॉलो करनी है, दैट इज राजयोगा मेडिटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग का मैंने जो इश्यू बताया। अब हम आते हैं कि हम सेवाएं कैसे करते हैं, आपके पास आप कहां कहां सेवा कर सकते हैं और आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हो सकते हैं जो विंग ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो ये जो हमारे जो सेक्टर जिन पर हम फोकस करते हैं, दैट इज रोडवेज, रेलवेज एंड टूरिज्म। लेकिन हम सब इससे जुड़े हुए हैं। तो मान लो आप में से कोई स्कूल में है या कॉलेज में, आप टीचर हैं, तो आज बच्चों को भी एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ब्रह्मा कुमारी इसके सेशन वहां पर भी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। अगर आप रेलवेज और रोडवेज में, आप अगर आप पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिस में हो, वहां पर भी आप ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो आप कोई भी फील्ड में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस में हो, चाहे आपका खुद का प्राइवेट बिजनेस है, चाहे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, हर जगह ये प्रोग्राम्स आप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। ये मैं बार बार इसलिए मेंशन करता हूं क्योंकि अभी भी कई लोग पूछते हैं कि आप लोग आकर क्या सेवा करोगे, है ना, आप क्या कराओगे। तो बहुत सुंदर हमारे पास सेशंस हैं, ऐसे टूल्स से साधन बने हुए हैं जिनसे लोगों को ये अवेयरनेस और सेंसिटाइज किया जा सकता है। तो हमारे ये जो मुख्य जो टूल्स हैं वो आपके सामने लिस्टेड हैं। सबसे पहला है सेशंस विद स्पिरिचुअल अप्रोच। इसके पहले ही आपने एक सुहाना सफर अटेंड किया, कविता बहन वाला सेशन, कैसा था वो सेशन? वैल्यूज की बात थी लेकिन उसको बताया कैसे गया, एक जर्नी के रूप में। आप एक जर्नी कर रहे हो और बहुत सुंदर तरीके से आपको वैल्यूज सिखाई गई। ऐसे जितने भी ब्रह्मा कुमारी के सेशन डिजाइंड हुए हैं उसका अप्रोच बहुत अनोखा है, वो स्पिरिचुअल है, उसमें आप बोर नहीं हो सकते, आपको आपकी लाइफ के साथ क्योंकि वो कनेक्टेड है आप बहुत अच्छे से उसको कनेक्ट हो जाते हो। तो ऐसे हमारे सेशंस बने हुए हैं और आप अपने स्थान पर, ऑफकोर्स कई बार ऐसा होता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं मिलेगा, आपके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके पास उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो आप चाहे 45 मिनट्स का एक सेशन रखा दो या आधे घंटे का सेशन रखा दो। अगर आपके सीनियर्स अलाउ कर सकते हैं तो आप वहां जरूर 2-3 दिन की ट्रेनिंग भी रखा सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको वर्कशॉप्स रखने हैं जिसमें बहुत सुंदर एक्टिविटीज हो, आप वर्कशॉप्स भी अरेंज कर सकते हैं। हर एक का अप्रोच बहुत सुंदर होगा, वैल्यू बेस्ड होगा, लोगों को सेंसिटाइज करने की बात होगी, उनको अवेयर करने की बात होगी। इतने सुंदर हमारे सेशंस बने हुए हैं। तो यहां खास ये मेंशन करना चाहेंगे कि जब हम सेवाएं करते हैं तो हर साल का हमारा थीम होता है। इस साल का हमारा थीम, जो कैनोपी थीम है, दैट इज यात्री कृपया ध्यान दें, है ना। जो सर्विस देने वाले हैं उनकी तो सेवा करी, लेकिन इस साल हम सर्विस लेने वालों की सेवा कर रहे हैं, माने जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेवा। तो उसमें खास करके हमारे ये तीन सेशंस डिजाइन हुए हैं, सुहाना सफर जो आपने ऑलरेडी अटेंड किया, आपकी यात्रा सुखमय हो एंड स्ट्रेस फ्री लिविंग, है ना। ये सारे सेशंस में पैसेंजर्स के लिए बहुत जरूरी जरूरी बातें बताई जाती है। ये सेशंस के साथ साथ हम दो साधन और बना रहे हैं। वन इज मोबाइल ऐप, उसका कॉन्सेप्ट है मेडिटेशन ऑन द गो। आजकल लोगों की कंप्लेन बहुत होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो हम कहते हैं ठीक है, आप यात्रा करते हो तब तो आपके पास टाइम है 2-3 घंटे का। तो हम आपके लिए एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं जो आप ट्रैवलिंग के दौरान उसको ओपन करिए, जो आप यहां सेशन सीख रहे हो उसको शॉर्ट में क्या है राजयोगा मेडिटेशन, उसके मुख्य सेशंस आपको वहां मिल जाएंगे, बहुत इजीली आपको बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, आप मेडिटेट कर सकते हैं। ऐसा ही छोटा एक साधन टेंट कार्ड, जैसे आप होटल रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो डाइनिंग पे एक सुंदर सा कार्ड जिसको एक शो पीस की तरह भी आप रख सकते हो, वैसा भी हम डिजाइन करें जिसमें मेडिटेशन की कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो ये था सेशंस की बात। ऐसे ये दूसरे भी सेशंस हैं, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ माइंड। मैं बहुत ज्यादा आगे लिस्ट नहीं करूंगा, टाइम मेरा पूरा हो रहा है, बट हर सेशन का जो अप्रोच है वो बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो आप सबको रोड साइंस पता होंगे ना, हम में से कितने लोग ध्यान देते हैं? बहुत कम। अगर पूछा जाए तो बहुत ऐसे आंसर्स आएंगे, अरे ये तो हमें पता ही नहीं है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप सबको सिग्नल के तीन कलर पता है, ग्रीन, ग्रीन माना गो, रेड माना स्टॉप, एम्बर लाइट माना, कोई खड़ा होकर के बोल सकता है एम्बर या ऑरेंज लाइट जो होती है उसका पर्पस क्या है? बोलिए, गेट रेडी, सॉरी, गो कॉशियसली, ओके, गो कॉशियसली, ये एक अच्छा, और आजू बाजू देखिए, और बी प्रिपेयर टू स्टॉप माना स्लो डाउन, दिस इज द करेक्ट आंसर। एम्बर लाइट जो है या ऑरेंज लाइट जिसको हम बोलते हैं उसका पर्पस ये है कि स्लो डाउन, जब आप तेज गति से जा रहे हैं आपको सामने तीन लाइट दिख रही है उसमें अगर एम्बर लाइट आती है माना वो कह रही है आप सिग्नल के नजदीक आ रहे हो, आप अपनी स्पीड को क्या करो, स्लो डाउन करिए क्योंकि वहां रेड सिग्नल आने वाला है। लेकिन मेजोरिटी को ये लगता है कि ये स्विचिंग के टाइम पे यूज होता है, माना जैसे किसी ने कहा कि एम्बर लाइट माना रेडी टू गो, ऐसा नहीं है, सिग्नल हमेशा रेड से डायरेक्ट ग्रीन होता है, बीच में एम्बर लाइट नहीं होते। अच्छा, और एक क्वेश्चन पूछता हूं, कहीं कहीं वो लाइट ब्लिंक करता है उसका पर्पस क्या है? सॉरी, लुक अराउंड, या कई लोग ऐसा समझते हैं वो सिग्नल चल नहीं रहा है, खराब हो गया इसलिए वो ब्लिंक कर रहा है, ऐसा नहीं है। रात के टाइम पे ना वो सिग्नल ब्लिंक करता है ऑरेंज लाइट केवल, तो गो कॉशियसली जो भाई साहब ने कहा, आजू बाजू देखिए यहां पर क्रॉसिंग है ना, ध्यान से जाइए, कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन हम लोग को नहीं पता होती है ना, ये सब अवेयरनेस लाना खास करके बच्चों में बहुत जरूरी है। फिर हम खास बच्चों और यूथ के लिए कॉम्पिटिशन्स करते हैं, चाहे वो ड्राइंग कॉम्पिटिशन है या फोटो कॉम्पिटिशन है या पावर पॉइंट डिजाइनिंग कॉम्पिटिशन है। यहां भी एक कॉम्पिटिशन करें दो मिनट के लिए, सब लोग खेलना चाहेंगे? चलिए खड़े हो जाइए, एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं, दो दो की पैर बना लीजिए आमने सामने, और आपके पास कोई भी एक चाहे हैंकी या फिर पेन हो तो आप दोनों के बीच में रख दो चेयर के ऊपर, दो दो की पैर बना लो, और आप में से अगर हैंकी है तो बीच में रख दो। आप सबने खेला होगा एक फूल दो माली, एक फूल दो माली, ऐसा खेला होगा, ठीक है? चलिए सब लोग रेडी, जरा हाथ ऊंचा करके दिखाइए, ऑल आर रेडी, सबके दो दो के पैर बन गए हैं, ठीक है। व्हेन आई से हेड, आपको हाथ रखना हेड के ऊपर, व्हेन आई से शोल्डर्स, आपको हाथ यहां रखना है, व्हेन आई से वेस्ट, आपको हाथ यहां रखना है, व्हेन आई से नीज, आपको हाथ यहां रखना है, गॉट इट? ध्यान से सुनना है, और जब मैं बोलू फूल, तो फूल जब बोलू तो क्या करना है, वो जो बीच में जो साधन पड़ा है चाहे हैंकी या पेन जो भी आपने रखा है उसको आपको उठा लेना है, जो उठा लेगा दैट पर्सन विल बी द विनर। सिंपल एक्सरसाइज, एवरीवन रेडी? यस और नो? यस, ठीक है। चलिए, हेड, शोल्डर, वेस्ट, नीज, हेड, शोल्डर, वेस्ट, नीज, यू आर डूइंग वेरी गुड, हेड, शोल्डर, वेस्ट, नीज, नीज, वेस्ट, फूल। ठीक है, दो राउंड और करते हैं, अब वैल्यू ढूंढना इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, ठीक है? चलिए रेडी, फिर से हेड, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा, हेड, शोल्डर, वेस्ट, नीज, शोल्डर, हेड, नीज, वेस्ट, फूल। कौन कौन दो बार जीत गया, जरा हाथ उठाओ, वेरी गुड, और एक चांस है थर्ड राउंड, रेडी? जीतना ही है, जो भले जीता नहीं उसको जीतना ही है। चलिए, हेड, शोल्डर, वेस्ट, हेड, शोल्डर, वेस्ट, नीज, हेड, शोल्डर, वेस्ट, नीज, फूल। बैठ जाइए, अच्छा अभी मुझे आप बताइए किस किस ने तीनों राउंड जीते, वो जरा हाथ खड़ा करो, किस किस ने तीनों राउंड जीते हैं? अच्छा आप में से कोई ऐसा रहा कि दोनों प्लेयर जीते, जो दोनों प्लेयर जीते, तीन राउंड थे जो दोनों प्लेयर जीते, ऐसा कोई यहां पर है? वो जरा खड़ा हो जाए। साथ में खेल रहे थे फिर भी आप दोनों जीते, कैसे जीते आप? दोनों ने साथ में उठाया, आप दोनों जीते साथ में, कैसे जीते आप? एक साथ उठाया। मेरा भाव ये है, आप में से किसी ने ये सोचा कि हम दोनों मिलकर के उठाएं, या साथ में ही जीते, हम दोनों में से किसी को हराने की कोशिश ना करें? किसी ने विन विन का सोचा क्या? है ना, हम में से मेजोरिटी ने क्या सोचा कि मुझे जीतना है दूसरे को हराना है? स्पिरिचुअलिटी हराना नहीं सिखाती है, स्पिरिचुअलिटी सिखाती है विन विन, विन विन सिचुएशन, है ना। ये क्या है, हम सबका संस्कार बन गया ना, कोई भी गेम आई, कोई भी कंपटीशन आई, माना उसमें एक जीतेगा एक हारेगा, ये हमारे बिलीफ सिस्टम में फिट हो गया है। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती है, स्पिरिचुअलिटी कहती है हम दोनों जीत सकते हैं, स्पीड एंड सेफ्टी साथ हो सकता है, है ना। इसलिए कल मोहित सर ने एक बात कही थी, सेशन बहुत अच्छे हैं, आप सबको मजा भी आएगा, हो सकता है नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में आप वापिस आओ, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो अपने लाइफ में तभी होगा जब आप कुछ करेंगे, और कुछ करने के लिए ये छोटे छोटे अभ्यास, सिंपल सा गेम था, ऑफकोर्स मैं भी खेलता था तो मैं भी यही करता था कि मुझे किसी को हराना है, लेकिन क्या दोस्तों हम यहां से जब जाएंगे या अभी से लेकर के हर कार्य में हम ये सोच सकते हैं कि हम दोनों जीते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, जरा अच्छे से हाथ उठा के बताओ। अब से हम जो भी कार्य करेंगे, चाहे ऑफिस में चाहे परिवार में, हम दोनों जीतेंगे, हारेगा कोई नहीं। एक बहुत अच्छा कोटेशन था, आई नेवर लूज, इधर आई विन और आई लर्न, आई नेवर लूज, हारने की बात कभी नहीं करना, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे कॉम्पिटिशन बहुत सुंदर होते हैं, हम विंग ने बहुत अच्छे क्रिएटिव्स बनाए हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट क्रिएटिव्स, ये ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो, स्टेज पे लगे हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। ये यात्री कृपया ध्यान दे में अच्छे अच्छे स्लोगन्स बने हैं, यात्री कृपया ध्यान दे नए आदर्श की पहचान बने, ऐसा ही हर राही का सम्मान करें। ये एक पर्टिकुलर, ये जो ग्राफिक्स है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास सुंदर ग्राफिक बने हैं, ये हमारे फ्रांस के एक भाई हैं, ओकिम करके नाम है उनका, उन्होंने बहुत ऐसे सड़क सुरक्षा के लिए इमेजेस बनाए हैं, जैसे इसमें बहुत सुंदर मैसेज है, ड्राइवर कहता है सीट बेल्ट को आई रिस्पेक्ट यू, और सीट बेल्ट ड्राइवर को कहता है आई प्रोटेक्ट यू। ये भाई साहब क्या कर रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, फोन पे एक्सीडेंट हो गया, ऊपर जाके लटके हैं, अब बोल रहे हैं कैन आई कॉल यू आफ्टर फ्यू मिनट्स, है ना। ये भाई साहब स्कूटर पे बाइक पे जा रहे हैं, अब हवा में है, अब उनको याद आ रहा है मुझे हेलमेट पहनना चाहिए था, है ना। ये बहुत फनी ऐसे अच्छे, तो इस तरह के सुंदर हमारे क्रिएटिव्स बने हैं। इसका जिक्र स्वामी भाई ने किया था, थैंक यू कार्ड, ये आप जरूर अपने साथ, इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगी, आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, कहीं भी कोई यात्री जब आप यात्रा करते हैं उस चाल ड्राइवर को आप बहुत अच्छे से थैंक यू मैसेज दे सकते हो। एक बहुत सुंदर वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको बीच में अक्षय कुमार दिखे, हम जस्ट लास्ट 5 मिनट्स लेंगे, है ना। इस वीडियो को आप देखिए, इसके बाद हम पूरा कर रहे हैं। ये सब हमारे बहुत सुंदर क्रिएटिव्स बने हैं और सेवा में बहुत अच्छा यूज होता है, यूथ को बहुत एम्पावरिंग करता है। इसमें बीच बीच में अक्षय कुमार जी आएंगे, वो वीडियो हमारा नहीं है लेकिन उसमें कड़क हवालदार है, वो भी हम विंग ने ही डिजाइन किया हुआ है। चलिए बहुत सुंदर वीडियो है, एक बार इसका मजा लेते हैं।
पहचान तो लिया ही होगा आपने मुझे, और मैं जानता हूँ आप सब क्या चाहते हैं, यही ना कि मैं हमेशा हमेशा के लिए रिटायर हो जाऊं। सच कहूं तो मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, धरतीवासी यह होने नहीं देते। जरा इसे सुनिए, तब पता चलेगा मैं क्यों नहीं रिटायर हो पा रहा हूं। पता है यह किस इशारे की घंटी है? इसका मतलब है पूरी दुनिया भर में हर 25 सेकंड में एक्सीडेंट से मौत हो रही है। अरे मैं कहता हूं इंसान को खुद की जान की फिक्र नहीं, कम से कम मेरे जान की तो फिक्र करो। अब बच्चे की जान लोगे क्या? ना वर्कलोड। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद आकर आपको समझाऊं कि कायदे में ही फायदा है।
अरे मैं बड़ा चिंता क्यों कर रहे हैं, फुल सेटिंग कर रहे थे हम लोग।
एक मिनट,
जानते हैं मेरे बाप कौन है?
भाई साहब कौन नहीं जानता। 1892 में वो पहले भारतवासी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। उनकी किताब पावर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ही अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी। आप पारसी लोग जो हैं हमारे देश की शान हैं।
मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ।
आप पारसी नहीं है? आप पारसी नहीं है, है? आप दादा भाई नौरू जी के बेटे, मतलब ये रोड आपके बाप की नहीं है?
मैंने कब कहा ये रोड मेरे बाप की है?
फिर बिना सीट बेल्ट पाए फोन से गल कर दे, शर्म नहीं आंदी तुहानू? हेलो पैसे पार देना
पाजी। फर्ज करो ए रोड मेरे बाप दी होंगी
ते मैं उन्हें भी फाड़ लेंगे। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के
बाप के नहीं है।
शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
खुद की और दूसरों की जान का जिम्मेवार कौन? अगर इस्तेमाल किया गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन।
बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो?
ओए बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है?
देखिए भाई साहब आप कौन है?
जी मैं इसका बाप हूँ।
आप इसके बाप हूँ? नमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार नमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
जी नहीं।
तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
चालान तो कटेगा भैया तेरे।
और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
रोड किसी के बाप का नहीं।
शाबाश, सड़क सुरक्षा।
टाइम कम है इसलिए मैंने थोड़ा इसको बीच में स्टॉप किया, लेकिन एक मैसेज बहुत क्लियर है, ये रोड किसी के आदरणीय पिताश्री का नहीं है, है ना? ये सिंपल सा मैसेज है इसमें। ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं, हमारे क्रिएटिव्स बने हैं। आई जस्ट टेक अ फास्ट फॉरवर्ड, आपको जस्ट ग्लिम्सेस दिखा देता हूं हमारे जो इवेंट्स में, पब्लिक इवेंट्स। ब्रह्मा कुमारी केवल सेशंस ऑर्गेनाइज नहीं करती है, हम बहुत पब्लिक इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मैराथन है, बाइक रैलीज है, वॉकथॉन है, है ना? ये ग्लिम्सेस आप उसके देख रहे हैं। हाँ, ये पर्टिकुलर पिक्चर आरटीओ के साथ मिलकर के एक बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ था, और वहां पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, लार्जेस्ट रोड सेफ्टी लेसन ये बनाया गया था, और गिनीज ने इसको एक रिकॉर्ड में रजिस्टर भी किया है। ऐसे ही हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, ये आप इसकी झलकियां देख रहे हैं। ह्यूमन चेन, 5 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाई थी, जस्ट मैसेज देना था रोड सेफ्टी का। इसमें स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। ये था अमृत महोत्सव के टाइम पे हमने बाइक रैलीज ऑर्गेनाइज करी थी पूरे देश में, लक्ष्य रखा था 75 का, लेकिन इतना जोश लोगों का कि 100 रैलीज ऑर्गेनाइज हुई थी, ये इसका इम्पैक्ट हुआ था, बहुत सारे लोगों तक हम पहुंच पाए थे। इसी तरह वॉकथॉन, यस पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा सहयोग है, बहुत अच्छे से हमको कोऑपरेट करते हैं। वुमेन्स कार रैली ऑर्गेनाइज करी है, कुछ और ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसमें हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, वुमेन्स को एजुकेट करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पे जाके आगे खड़े रहे, जब आपको पता है कि यहां हमारे पास 30 सेकेंड्स है, वहां जाकर के हमारी बहनें वहां खड़ी रही हैं मैसेज देने के लिए, ये वो वाले सीन्स हैं। मेडिटेशन, रोड पे जाके मेडिटेशन किया है कि वहां के वाइब्रेशन हम बदलें, है ना, मेडिटेशन का उपयोग उस स्थान पर भी साइलेंस फैलाने का। और ऐसे ही हमारे जो रोडवेज और रेलवेज है उनके लिए भी सेशंस हुआ। ये पूरे यूपी में लास्ट ईयर इसी ईयर में प्रोग्राम हुआ था ऑनलाइन सारे यूपीएसआरटीसी के ऑफिसर्स के लिए। ये एक प्राइवेट कंपनी है ग्रीन सेल मोबिलिटी, इनके हर डिपोज में ब्रह्मा कुमारी इसके सेशन चलते हैं, बहुत सुंदर रिजल्ट मिल रहा है। ये कंपनी बहुत बड़ा एक चैलेंज फेस कर रही थी, ये इलेक्ट्रिक बसेस चलाती, इतने सारे एक्सीडेंट्स, ड्राइवर्स एकदम स्ट्रेस्ड, और उन्होंने ब्रह्मा कुमारी को अप्रोच किया और आज उनके लगभग हर डिपोज में ब्रह्मा कुमारी इसके सेशन चलते हैं, बहुत सुंदर उसका रिजल्ट है। और एक ये लास्ट चीज है जो हमने इनिशिएटिव लिया था, आप सबने देखा होगा मुंबई की बीएसटी बसेस। ऑफ कोर्स हम तो कुछ और सेवा के लिए ब्रह्मा ट्रांसपोर्टिंग की टीम गई थी, लेकिन वहां के ऑफिसर्स ने प्रपोज किया कि आप हमारी बसेस को भी इस तरह से यूज कर सकते हैं एक अच्छा मैसेज देने के लिए, जब ब्रह्मा कुमारी इसका स्लोगन है कम बोलो धीरा बोलो मीठा बोलो, है ना। ये बसेस पूरा एक महीने तक लगभग 26 बसेस को इस तरह से डेकोरेट किया था और ये मैसेज दे रहे थे। तो इसका टाइटल भी ऐसा ही आया था कि मूविंग बेस्ट बसेस बिकेम द रोड सेफ्टी मैसेजर्स। और फाइनली हाँ, कॉन्फ्रेंस, यस, आप सब इसके अनुभवी हो इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं है कि कॉन्फ्रेंस में आप सबका अनुभव बहुत अच्छा होगा, लेकिन हाँ जरूर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप यहां से अनुभव करके जा रहे हैं दोस्तों, जरूर अपने अपने स्थान पे जाके इसको बांटना, लोगों को इंस्पायर करना। एंड आप अपना फीडबैक जरूर हमें इस ईमेल आईडी पर दे सकते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ भी अगर हमारे अंदर चेंजेस चाहिए आप जरूर हमें दीजिए, हमें भी इम्प्रूवमेंट का मौका दीजिए। आप यहां इस ईमेल आईडी पर हमें लिख सकते हैं। एंड यस, फाइनली लास्ट, हर सेशन का एंडिंग मेडिटेशन से होता है, एक बहुत सुंदर सॉन्ग बजेगा और जो हमने इश्यू डिस्कस किया है उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सॉन्ग स्पेसिफिक बनाया गया है। आप इसके शब्द को ध्यान से सुनिए और दूसरे लोगों को अपनी शुभ भावना दीजिए। थैंक यू सो मच।
खो गए किधर आज खो।